नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है मोटर के छींटे। ये भी उनकी और कहानियों की तरह बेहद दिलचस्प है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आई है। चलिए कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। क्या नाम की प्रातःकाल स्नान पूजा से निपट कर तिलक लगाकर पीतांबर पहनकर खड़ाऊ पांव में डाल बगल में पत्रा दबाए हाथ में मोटा सा क्षत्र मस्तक भंजन लेकर एक जजमान के घर चले। विवाह की साइत विचारनी थी, कम से कम एक कलदार का डॉल था, जलपान ऊपर से। और मेरा जलपान कोई मामूली जलपान नहीं है, बाबुओं को तो मुझे निमंत्रित करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उनका महीने भर का नाश्ता मेरा एक ही दिन का जलपान है। इस विषय में तो हम सेठ साहूकारों के कायल हैं। ऐसे खिलाते हैं, ऐसे खिलाते हैं, और इतने खुल के मन से कि चोला आनंदित हो उठे। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। खिलाते समय किसी की रोनी सूरत बनाई तो मेरा शुदा गायब हुई। रोकर किसी ने खिलाया तो क्या खिलाया, ऐसा भोजन कम से कम मुझे नहीं पचता। जजमान ऐसा होना चाहिए कि ललकारता जाए, लो शास्त्री जी एक बालूशाही और मैं कहता रहूं नहीं जजमान अब नहीं। रात खूब वर्षा हुई थी, सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। मैं अपने विचारों में मग्न चलता चला जाता था कि एक मोटर छप छप करती हुई निकली गई और मुंह पर छींटे पड़े, जो देखता हूँ तो धोती की मानो तो कीचड़ धोकर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट वो अलग, देह भ्रष्ट हुई अलग, आर्थिक क्षति हुई वो अलग। अलग मोटर वालों को पकड़ पाता, ऐसा सोच रहा हूँ कि उनकी कस के मरम्मत करता अगर मेरे हाथ लग जाते तो। मन महसूस कर रह गया इस वश में कि जजमान के घर तो नहीं जा सकता, अपना घर भी मील भर से दूर था ही। फिर आने जाने में सब मेरी ओर देखकर तालियां भी बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी नहीं हुई थी। अब क्या करे मन, घर जाऊंगा तो पंडिताइन डांटेगी। पर इस तरह इस वेश में जजमान के घर भी नहीं जा सकता। मैंने चटपट अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। इधर उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगा। भ्रातेज सिर पर चढ़ बैठा। उसी 10 मिनट में गुजरे ही न थे कि एक मोटर आती दिखाई दी। ओह, ये तो वही मोटर है, शायद स्वामी को स्टेशन से लेकर लौट रही है। यूं ही समीप आई, मैंने एक पत्थर चलाया, भरपूर जोर लगाकर चलाया। साहब की टोपी उड़ सड़क पर जाके गिर पड़ी। मोटर की चाल धीमी हुई, मैंने दूसरा फेंका, खिड़की के शीशे चूर चूर कर दिए और एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल पर भी लगा। खून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब बड़े गुस्से में उतरकर मेरी तरफ आए और घूंसा तानकर बोले, सुअर हम तुमको पुलिस में देगा। इतना सुनना था कि मैंने पोथी पत्रा जमीन पर फेंका, साहब की कमर पकड़कर अडंगी लगाई तो कीचड़ के भद से गिरे। मैंने चट सवारी गट और गर्दन पर 25-26 ताबड़तोड़ जमा दिए कि साहब चौंधे आ गए। इतने में उनकी पत्नी भी भागी भागी आई, ऊंची एड़ी की जूती, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होठों पर रंग, भौं पर स्याही, मुझे छाते से गोदने लगी। मैंने साहब को छोड़ा और डंडा संभालते हुए बोला, देखो देवी जी, आप मर्दों के बीच में ना पड़ें, कहीं चोट चपेट आ गई तो मुझे बड़ा दुख होगा। फिर क्या था, साहब ने अवसर पाकर संभल कर उठे और अपने बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमाई। मैंने भी घुटने की बड़ी चोट लगाई। मैंने बकौल का डंडा उठा लिया और साहब के पाँव में जमा दिया। वे कट से पेड़ की तरह गिर गए। मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी, मैंने धीरे से उनकी छतरी छीन कर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा ही था, अब वह भी उतर पड़ा और छड़ी लेकर मुझ पर पिल पड़ा। मैंने एक डंडा उसे भी जमाया, लोटपोट हो गया। 500 आदमी तमाशा देख जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े बोले, रास्कल हम तुमको पुलिस में देगा, मैं फिर डंडा संभाला और चाहता था खोपड़े पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बाबू, हम पुलिस में नहीं जाएगा, माफ़ी कर दो, माफ़ कर दो। मैंने कहा, हाँ पुलिस का नाम ना लेना, नहीं तो यहीं खोपड़ी रंग दूंगा, बहुत होगा, 6 महीने की सजा होगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते चलते हो, मारे घमंड के अंधे हो गए हो, सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका कुछ ध्यान नहीं रहता। इस दर्शन में आलोचना की ओर, अरे महाराज, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं, एक आदमी बोला, तो सब उसका तमाशा देखते रहे और खूब हंसने लगे। आपने बड़ा अच्छा किया कि इन्हें एक डंडा मारकर ठीक कर दिया। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुनते हो कुछ, जनता क्या कहती है? साहब ने उस आदमी को लाल लाल आंखों से देख कर कहा, तुम झूठ बोलते हो, बिल्कुल झूठ बोलते हो। मैंने डांटा, अभी तुम्हारी हेकड़ी कम हुई नहीं, लगता है और 2-4 जमाने पड़ेंगे। साहब ने घिघिया कर कहा, नहीं नहीं, अब बस सच बोलता है, बहुत सच बोलता है, अब तो खुश हो। दूसरा दर्शक बोला, अभी तो ऐसे ही कह रहे हैं, जो गाड़ी में बैठेंगे फिर वही हरकत शुरू कर देंगे, गाड़ी पर बैठते ही सब अपने को नवाब का नाती समझने लगते हैं। दूसरे महाशय बोले, कहिए कि थूक कर चाटो। तीसरे सज्जन ने कहा, कान पकड़कर उठक बैठक लगाइए। चौथा बोला, अरे ड्राइवर को भी, ये सब तो और बदमाश होते हैं, मालदार आदमी घमंड करे तो एक बात है, तुम किस बात पे अकड़ के रहते हो? चक्कर हाथ में लिया और आंखों पर पर्दा पड़ गया। मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ड्राइवर और मालिक दोनों को ही कान पकड़कर उठक बैठक लगाना चाहिए और मेम साहब इस उठक बैठक को गिने। सुनो मेम साहब, तुमको गिनना होगा पूरी 100 बैठकें, एक भी कम नहीं, ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया, दो ने ड्राइवर महोदय को। ड्राइवर बेचारे की टांग में चोट थी, फिर भी वह बैठकें लगा रहा था। साहब की अकड़ अभी काफ़ी थी, आप लेट गए और उलझलूल बकने लगे। मैं उस समय रुद्र बना हुआ था, दिल में ठान लिया था कि इनसे बिना 100 उठक बैठक लगाए ना छोड़ूंगा। 4 आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को ढकेलकर सड़क के नीचे गिरा दो। हुक्म की देर थी कि 4 की जगह 50 आदमी लिपट गए और गाड़ी को ढकेलने लगे। वह सड़क बहुत ऊँची थी, दोनों ने तरफ के जमीन नीची और गाड़ी नीचे गिरती और टूट टाट कर ढेर हो गई। गाड़ी सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी कि साहब कांप कर उठ खड़े हुए और बोले, बाबा गाड़ी तो मत तोड़ो, हम उठक बैठक लगा तो रहे हैं। मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया, मगर सबो एक दिल लगी मिल गई, मानो कि उनका यही मन था कि हम किसी रईस ज्यादे की गाड़ी को इस तरह तोड़ें और उससे उठक बैठकें लगवाएँ। फिर क्या था, किसी ने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब मैं डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा तो सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब ने आंखें बंद करके बैठकें लगाना शुरू कर दी। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मेम साहब ने रोते हुए जवाब दिया, हम नहीं गिनते। तो इस तरह साहब दिन भर उठक बैठक लगाते रहेंगे? अगर उनको कुशल से घर ले जाना है और बैठकें नहीं और लगवाना है तो चुपचाप गिनना शुरू कर दीजिए, मैं उनको रिहा कर दूंगा, बड़ी गुस्से में मैंने मेम साहब से कहा। साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान बच ना पाएगी तो बैठकें लगाने लगे। 1, 2, 3, 4, 5 साहब एक दूसरे की मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़ कर बोले, पंडित जी मेरा, आप मेरे बाप हैं, मुझ पर दया करो, अब हम कभी मोटर पर नहीं बैठेंगे, मुझे भी दया आ गई है। बोलो, नहीं मोटर पर बैठने से मैं नहीं रुकता, इतना ही कहता हूँ कि मोटर पर बैठ कर के आदमियों को आदमी समझो। दूसरी गाड़ी तेज चली आती है, मैंने इशारा किया, सब आदमियों ने 2-2 पत्थर उठा लिए। अब गाड़ी का मालिक स्वयं ड्राइवर क्या कर रहा था, गाड़ी धीमी करके धीरे धीरे सरक जाना चाहता था, पर मैंने बढ़कर उनके दोनों कान पकड़े और खूब जोर से हिलाकर कहा, दोनों गालों पर एक एक पड़ाका देकर बोला, गाड़ी के छींटे उड़ा के, गाड़ी में दूसरे लोगों को आदमी समझ ना समझते हुए तुम छींटे मारते चलोगे, अब उड़ाओगे आगे से छींटे? लोगों को जो है कपड़े गंदे करोगे। खूब डांटा, खूब फटकारा, चुपचाप बेचारे सुनते रहे और आखिर में खूब डांट फटका कर फिर बोले, ये महोदय बक झक तो करते रहेंगे मगर 100 आदमियों को पत्थर लिए खड़ा देख बिना कान पूछ रुलाए नहीं ले जा सकते। उनके जाने के एक ही मिनट बाद दूसरी गाड़ी आ गई। मैंने 50 आदमियों को राह रोका लेकिन गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें भी चार पकड़ के देकर विदा किया मगर ये बेचारे भले आदमी थे, मजे से चाटे खाकर चलते हुए। साहस एक आदमी ने कहा, पुलिस आ रही है, और सबके सब हुर हो गए। मैं भी सड़क के नीचे उतर गया और एक गली में घुसकर गायब हो गया। तो ये थी आज की कहानी, बेहद मज़ेदार। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी कि एक पंडित जी कैसे आराम से तैयार होकर सुबह सुबह जजमान के घर चले और रास्ते में एक गाड़ी वाले ने उनके सारे कपड़े ख़राब कर दिए, और उसका कितने अच्छे शब्दों में जो है प्रेमचंद जी ने वर्णन किया है। तो मुझे बहुत पसंद आया, पढ़ते पढ़ते बहुत हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैं हंसी नहीं और मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कहानी डालूं। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये कहानी शेयर करिएगा, क्योंकि कहानियाँ, किस्से, अफसाने हर किसी को सुनने सुनाना बहुत पसंद होता है। मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद है और मुझे सुनाना भी बहुत पसंद है। तो मैं इस तरह नई नई कहानियाँ आपके सामने लेकर आती रहूँगी। फिर मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ। इजाज़त दें, अपना ध्यान रखें, और मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नई कहानी में।